हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयुष्मान ने प्रीति की नाराज़गी दूर कर ली थी और अब किचन में खाना बना रहा था। प्रीति कमरे में वापस आ गई थी और अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। आयुष्मान पर शक करना, आयुष्मान का सज़ा के तौर पर उसे दिल्ली छोड़कर आना, उसकी नाराज़गी, उसके सवाल, उससे मिलने की बेचैनी, उसे देखने की तड़प, उससे बात करने की बेकरारी, अचानक वो हादसा, मन में बैठा डर कि पता नहीं वो दोबारा आयुष्मान से मिल भी पाएगी या नहीं, मन में जन्मी आखिरी इच्छा कि इस दुनिया से जाने से पहले एक बार आयुष्मान को देख ले, उससे बात कर ले। बेहोशी में भी मन में बसा आयुष्मान का ख्याल, होश में आते ही सबसे पहले उसे देखने की बेचैनी, उसे देखने के बाद बेहिसाब बहते आंसू, उसके साथ बिताए ये चंद दिन जब आयुष्मान ने उसका और बच्चे का ध्यान रखने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारा दिन उसके पास रहता था, प्रीति से ज्यादा बच्चे को संभालता, उसके सब छोटे बड़े काम खुद से करता था। रात को उसके रोने पर भी प्रीति से पहले वो जाग जाता था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था बच्चे को चुप करवाने की। जब नहीं मानता था तब जाकर प्रीति को जगाता था। प्रीति असहज महसूस ना करे इसलिए उसके तरफ पीठ करके सोता था। उसके बाद अमृतसर में जो हुआ सब एक एक करके प्रीति के दिमाग में घूमने लगा। बहुत कुछ चल रहा था अभी उसके मन में, पर वो शांत बनी हुई थी। प्रीति अपने ही ख्यालों में गुम थी जब अचानक ही उस सन्नाटे में उनके बेटे की किलकारियों की आवाज़ गूंज उठी। प्रीति चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत ही अपने बेटे को बाहों में थामकर उसे दूध पिलाने लगी। करीब पौने घंटे बाद आयुष्मान खाना बनाकर वहां आया, पर सीधे अंदर घुसने के बजाय उसने दरवाज़ा नॉक किया ताकि प्रीति अलर्ट हो जाए। ये देखकर प्रीति के लबों पर अनायास ही मुस्कान खिल गई। आयुष्मान उसकी कितनी इज्जत करता था और कितना ध्यान रखता था कि प्रीति असहज ना हो, ये प्रीति बीते दिनों से देखती आ रही थी। आयुष्मान का ये रूप उसे और अच्छा लगने लगा था। शायद ही दुनिया में कोई पति हो जो अपनी बीवी के पास आने से पहले यूं अपने आने की सूचना देता हो, पर आयुष्मान ये करता था क्योंकि अब प्रीति अकेली नहीं थी और वो प्रीति और खुद को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। प्रीति ने दरवाजे पर दस्तक पाकर अलर्ट हो गई। उठकर बैठते हुए उसने अपने कपड़े ठीक किए, फिर दरवाजे की तरफ निगाहें घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली, आ जाइए अंदर। प्रीति की परमिशन मिलने पर आयुष्मान ने कमरे में कदम रखा और एक नज़र अपने बेटे को देखने के बाद प्रीति को देखते हुए बोला, खाना बन गया, चलकर खा लो। प्रीति ने सहमति में सर हिलाया और बेड से नीचे उतरने लगी। इतने में आयुष्मान ने आगे बढ़कर बच्चे को बीच में सुलाकर अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। ये देखकर प्रीति मुस्कुरा उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में दोनों डिनर कर चुके थे। आयुष्मान प्रीति को बच्चे के पास भेजकर खुद किचन में काम करने लगा था। प्रीति, मैं सोच रहा था कि दूसरे कमरे में सो जाऊं, ये बात आयुष्मान ने कही जब वो सब काम खत्म करके कमरे में आया था। प्रीति अपने नन्हे राजकुमार की मालिश कर रही थी। उसके कानों में आयुष्मान के शब्द पड़े तो उसने चौंकते हुए सर घुमाकर आयुष्मान को देखा और हैरानगी से बोली, क्यों, मेरे साथ सोने में क्या परेशानी है आपको? क्या रात को बेबी रोकर परेशान कर देता है इसलिए आप दूसरे कमरे में सोना चाहते हैं? प्रीति जितना सोच और समझ सकी उस हिसाब से आयुष्मान की इस बात के पीछे जो संभावना हो सकती थी वो उसने बयां कर दी। प्रीति की बात सुनकर आयुष्मान ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं वो बात नहीं, वो कभी भी उठ जाता है और मेरे सामने तुम उसे दूध पिलाने में कंफर्टेबल नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा थी दूसरे कमरे में सो जाऊं तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी और ना ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस और अलर्ट रहना पड़ेगा। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति को बीती रात की याद आ गई। एक पल को वो खामोश सी आयुष्मान को देखती रही, फिर निगाहें झुकाते हुए बोली, आप जानते हैं रात में इतनी बार उठता है ये, मैं कैसे संभाल पाऊंगी उसे अकेले? आप रहते हैं तो थोड़ा सहारा रहता है, पर मेरी मौजूदगी तुम्हें असहज कर जाती है। आयुष्मान की परेशानी भरे स्वर कानों में पड़ने पर प्रीति ने हौले से निगाहें उठाकर उसे देखा और धीमे स्वर में बोली, आपके जगह अगर कोई लेडी भी मेरे साथ होती है तो मैं इतनी ही असहज हो जाती हूँ। अभी नया नया है सब, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो सहज हो जाऊंगी फिर आपके साथ। अगर आपके साथ सहज ना हो सकी तो कैसे रह सकूंगी आपके साथ? प्रीति के इस तर्क के आगे आयुष्मान कुछ कह ना सका। असल में ये सिचुएशन जितनी प्रीति के लिए मुश्किल थी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड आयुष्मान के लिए भी थी, पर अब स्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही एकमात्र उपाय था उनके पास। आयुष्मान ने सर हिलाया और बच्चे के लिए डायपर और दूसरे कपड़े लेकर प्रीति के पास चला आया। मालिश के बाद दोनों ने मिलकर उस नन्हे राजकुमार के कपड़े बदल दिए और कुछ ही देर बाद वो सो गया। प्रीति और आयुष्मान भी अपनी अपनी तरफ लेट गए। आज फिर आयुष्मान की पीठ प्रीति की तरफ थी और प्रीति अपनी कश्मकश में उलझी हुई थी। दूसरी तरफ दिल्ली में अवधेश जी ऑफिस से लौटे और घर में पहला कदम रखते ही उनके कानों में बच्चे की किलकारियों की आवाज़ पड़ी। प्रीति जा चुकी थी, इसलिए बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने हैरानगी से गेट पर खड़ी मानसी को देखा। मानसी ने उनका सवाल समझते हुए अपना सर झुका लिया। कुछ उदास और खफा खफा सी लग रही थी वो। अवधेश जी थोड़ा अंदर आए तो ड्रॉइंग रूम में गरिमा जी नजर आईं, जो किसी बच्चे को कोई दवाई पिला रही थी, इसलिए बच्चा रो रहा था। उनके बगल में वर्षा बैठी थी, जो पहले से कुछ कमजोर सी लग रही थी। चेहरा भी एकदम पीला पड़ गया था, जैसे बहुत बीमार हो। वर्षा को देखते ही अवधेश जी उसे पहचान गए और कहीं ना कहीं ये बच्चा कौन है ये भी समझ गए, पर वो यहाँ क्या कर रही है ये नहीं समझ सके वो। बहुत से सवाल उनके जहन में उठने लगे। गरिमा जी, ये यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हैं? इन्हें यहाँ आने का अधिकार किसने दिया?